धवला पुस्तक 15वीं लेक्चर नंबर 18
ओम नमः सितेभ्य ओम नमः सितेभ्य ओम नमः सितेभ्य ओम शुद्धात्मने नमः नमो अरिहंतानं नमो सीतानं नमो आययानं नमो वज्जायानं नमो लोये सौवसाऊनं सयलिंदबिंदवंदिय महिनंदिय भौवपौमवनसंडम् अरिनंदन जिननाहं नमिऊन उवक्कमं उच्छं।
आचार्य श्री वीरसेन स्वामी रचित यह धवला नामक टीका है, जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबलि आचार्य। इसमें जो अंत में जो शेष 18 अनुयोग द्वारों की चर्चा है, उसमें से अभी अपना उपक्रम अनुयोग द्वार चल रहा है और ये 15वें पुस्तक के हम पृष्ठ संख्या 73 पर आ गए। 73 यहाँ नाना जीवों की अपेक्षा बात चल रही है। नाना जीवों की अपेक्षा, देखो ज्ञानावरण के उदीरक हमेशा, यहाँ मुख्य नियम क्या है, उस पर्टिकुलर कर्म की सत्ता वाले जीवों में उदीरक है क्या नहीं है और अनुदीरक है कि नहीं, ये बात हो रही है। तो हमने देखा कि ज्ञानावरण के उदीरक नाना जीवों की अपेक्षा होगी हमेशा, और एक भी अनुदीरक न हो ये भी हो सकता है, क्योंकि अनुदीरक कब है, जो सत्ता है और अनुदीरक 12वें के अंतिम आवली में, इसलिए कदाचित सभी उदीरक है। दूसरा भंग, कदाचित बहुत उदीरक है और एक अनुदीरक है, और कदाचित बहुत उदीरक और बहुत अनुदीरक, बहुत भी होगे तो भी संख्यात होगी। इस तरह से हमें देखना है। तो ज्ञानावरण में, दर्शनावरण में, दर्शनावरण के जो 6 है उनमें, और अंतराय में यही बात होगी। अब जो ध्रुवोदय जो 13वें के अंत में जिसकी विच्छित्ति होती उदीरणा की, उनमें भी यही बात लागू होगी, क्योंकि अनुदीरक कौन कहलाएगा, सत्ता है और अनुदीरक, जैसे तेजस है, कारमान है, वर्णादि है, वो अगुर लघु है, और फिर स्थिर अस्थिर, शुभ अशुभ, और वो निर्माण, उपघात नहीं, निर्माण। तो कहते इनके उदीरक तो हमेशा होगे। कभी कभी सभी उदीरक है और एक अनुदीरक है, जो 14वें में प्रवेश किया है, जिसकी तेजस कारमान की सत्ता है, पर उदीरणा 13वें के अंत में रुक गई है। प्रेरणा में ख्याल में आते ना, कैसे विचार करना है, सत्ता होनी चाहिए और अनुदीरक होने चाहिए। इस तरह से हमने ये बात देखी थी। अब ये निद्राओं के बारे में क्या है कि बहुत उदीरक भी है और अनुदीरक भी है, पांचों ही निद्राओं के बारे में, क्योंकि जहां निद्रा का उदय है तो उदीरक है और जागृत अवस्था में उसके अनुदीरक है, यानी उसका उदय हमेशा उदय होगा ही ऐसा नहीं है, ये कहना चाहते हैं। इसीलिए परंतु नाना जीवन की अपेक्षा बात हो रही है ना, निद्रा और जो ये बंध निरंतर है, स्थान वृद्धि वगैरह का, उदय निरंतर नहीं है, निद्राओं की बात चल रही है, पांच निद्रा की बात है, 4 दर्शनावरण तो उसका उदय चल रहा है, तो उसके उदीरक भी हमेशा हो गए, कहां वो 12वें के अवली पूर्व तक,
जो ऑलरेडी बंद किया हुआ है और सत्ता में प्रकृति है, तो उसका हर समय उदय होता ही
नहीं
है?
नहीं, वो हर समय उदय होने वाली वो ध्रुवोदय होती, उसके उदय का नियम अलग अलग नियम है उसके, जैसे साता और असाता, हर समय उदय नहीं, अंतर्मुहूर्त में पलट पलट कर होता है और वो प्रतिपक्ष का उदय होता है, यानी या साता का या असाता का, अब निद्रा का प्रतिपक्ष नहीं है, उदय होगा या नहीं भी होगा। ख्याल में आई बात ये? यानी निद्रा और पांच के जो बहुत उदीरक है, बहुत अनुदीरक है, जो जागृत है वो अनुदीरक है, अभी जिनका उदय चल रहा है वो उदीरक है। ख्याल में आती बात? अभी आगे हम पेज नंबर 72 पर बढ़ रहे थे। फिर साता रसाता के, वो नियम से उदीरक भी है और अनुदीरक भी है। अभी नारकियों में उन्होंने लगा के दिखाया था कल कि नारकियों में ये हो सकता है कि साता वेदनीय के कदाचित सभी जीव अनुदीरक है, यानी सभी साता की उदारणा करने वाले हो, ये हो सकता है, और कदाचित अनुदीरक बहुत और उदीरक एक साता का, और कभी कभी क्या होगा अनुदीरक भी बहुत और उदीरक भी बहुत, एक से ज्यादा उसको बहुत कहेंगे। अभी जो नारकियों को छोड़कर जो त्रसत जीव है, और वेदनीय में त्रसत जीव कहने से वो तो छठे गुणस्थान तक के लेना, क्योंकि वेदनीय की उदीरना तब तक है, तो वो साता वेदनीय के कदाचित सब उदीरक है। हमने देखा था नारकी को छोड़ो तो ये हो सकता है कि सभी साता के उदीरक है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? उदीरक बहुत और अनुदीरक एक हो, या उदीरक बहुत और अनुदीरक भी बहुत हो। अब असाता की बात है, साता के की तब अनुदीरक की बात की थी नारकियों में, अब नारकियों में भी साता की बात कर रही है, मैंने नारकियों में साता के उदीरक लिए थे, अब असाता के अन्य अन्य जीवों में हमने नारकी बिना अन्य जीवों में उदीरक लिए थे और नारकी में अनुदीरक लिए थे साता के, अभी नारकियों में असाता को लगाना तो बहुत सभी जो उदीरक है कहेंगे। नीचे से दूसरी लाइन, नारकी जीव असाता वेदनीय के कदाचित सब उदीरक, फिर उदीरक बहुत और अनुदीरक एक, और उदीरक बहुत और अनुदीरक भी बहुत। अब अन्य में अगर लगाना है, अन्य शेष त्रसजीवों में, त्रसजीवों की बात है, तो असाता के कदाचित सभी अनुदीरक है, दूसरा भंग बहुत अनुदीरक और एक उदीरक, और तीसरा भंग बहुत अनुदीरक और बहुत उदीरक। यहां तक तो हमने कल पढ़ा था। अभी अन्य प्रकृतियों की बात देखेंगे हम, ज्ञानावरण हुआ, दर्शनावरण, अंतराय हुआ, फिर वेदनीय भी हो गया। अब मोहनीय की बात करेंगे, सम्यक मिथ्यात्व के कदाचित सब जीव अनुदीरक। देखो ये कैसे सोचना है हमको, ये सांतर मार्गण है, हमने मालूम है इसमें कोई जीव न हो ये बात हो सकती है, यानी सम्यक मिथ्यात्व का उदय उदीरणा कब होगी? जीव जब सम्यक मिथ्यात्व गुणस्थान में होगे तब, तो कहते कि अभी कोई उसमें नहीं होगा तो उदीरणा वाले भी कोई नहीं होगा, तो सभी अनुदीरक ऐसा कहेंगे। हमने देखा ना ये उसमें अंतर पड़ सकता है पल्ले के असंख्यात्व का, तो सम्यक मिथ्यात्व के कदाचित सब जीव अनुदीरक। दूसरा भंग, अनुदीरक बहुत उदीरक एक, यानी एक ही जीव सम्यक मिथ्यात्व गुणस्थान में है, तथा अनुदीरक बहुत और उदीरक भी बहुत। हाँ, अब इस प्रकार से यहां तीन भंगों को कहना चाहिए। शेष 27 मोहनीय प्रकृतियों के नियम से बहुत उदीरक, शेष 27 में कौन? सम्यक मिथ्यात्व को छोड़कर। अभी हम दर्शन मोहनीय में देखते हैं, मिथ्यात्व के बहुत उदीरक भी है और बहुत अनुदीरक भी है। बहुत उदीरक यानी मिथ्यात्व की सत्ता वाले सारे अनंत जीव तो उदीरक है ही है, परंतु जो सम्यक दृष्टि है ऐसे असंख्यात जीव उसके अनुदीरक भी है। ख्याल में कैसे विचार करना है उनको समझना है। कहते शेष मोहनीय के, अभी सम्यक प्रकृति की बात है, सम्यक प्रकृति की उदीरणा कौन करते हैं? वेदक सम्यक दृष्टि जो 4 से 7 वेदक, तो ये बहुत उदीरक है उसके। और अनुदीरक कौन सारे? मिथ्या दृष्टि तो अनुदीरक है, तो बहुत अनुदीरक बहुत उदीरक वहां पर भी लागू होगी। अन्य प्रकृतियों में, जैसे अनंतानुबंधी में, अप्रत्याख्यान में, प्रत्याख्यान में, संज्वलन में, सब में ये बात लागू हो जाएगी। हाँ, अनुदीरक कहेंगे, ऊपर की श्रेणी में भी उसको अनुदीरक कहेंगे, जहां सत्ता है परंतु उदय नहीं है, यानी द्वितीय उपशम वाले में लेना, क्योंकि क्षायिक वाले की तो सत्ता ही नहीं है। इसी प्रकार यानी मोहिनी के अन्य प्रकृतियों में भी हम सोच सकते हैं, जैसे हास्य रति है, शोक रति है, वैसे तो जिसका उदय है वो सारे उदीरक है, जिसका उदय नहीं वो अनुदीरक है, यानी उसके लिए ऊपर के गुणस्थानों में की सोचने की जरूरत नहीं है। मिथ्या दृष्टि में भी कोई भय के उदय वाले वो भय के उदीरक है, जिसका उदय नहीं वो अनुदीरक है, शोक जुगुप्सा में ऐसा ही कहना, तीनों वेद के लिए भी ऐसा ही कहेंगे। इसलिए मोहिनी में सम्यक मिथ्यात्व के जो बताए हैं, बाकी छोड़कर सब में तो उदीरक बहुत और अनुदीरक बहुत ये बात लागू होती, सत्ता इस प्रकृतियों में। आप पूछेंगे सांसाधन भी तो सांतर मार्गणा है, तो उसकी अपेक्षा क्यों नहीं ली? पर अनंतानुबंधी का उदय तो पहले में भी है ना, इसलिए उसकी बात यहां नहीं होती। सम्यक मिथ्यात्व का उदय मात्र तीसरे गुणस्थान में, इसलिए उसी एक प्रकृति में ये बात लागू होती है। अब आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार सब आयुओं के विषय में कथन करना चाहिए। सब आयुओं के विषय में यानी क्या है? वो उदीरक भी है और अनुदीरक भी है, परंतु नार अवली वाले जीव कौन से अनुदीरक है? देव नारकी वगैरह के। हाँ, देखो क्या कहते, विशेष इतना है कि देवायु और नारकायु के अनुदीरक भजनीय है, क्योंकि वो तो हर समय में मरण में भी गैप पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, कितना पड़ेगा? 24 मुहूर्त का अलग अलग। तो मनुष्यायु को क्यों छोड़ा? हाँ, क्योंकि सातवें गुणस्थान में भी अनुदीरक है और हमेशा सातवें गुणस्थान में जीव पाए जाएंगे। देखो देव और नारकियों में कथन यानी उसका रीजनिंग अलग है, दोबारा सुनना कि आयु के बारे में क्या बता रहे हैं। अभी एक एक आयु की बात करते हैं। तिर्यंच आयु के उदीरक हो गए कि अनुदीरक हो गए? तो अभी अनंत जीव है तो उदीरक भी हो गए और अनुदीरक भी हो गए, जो अंतिम आवली में प्रवेश कर चुके वो अनुदीरक हो गए। अब देवायु की बात करते हैं। उदीरक है जो सारे देव जो है, तो उदीरक तो है ही है, परंतु जरूरी नहीं कि सब अंतिम आवली में कोई ना कोई प्रवेश कर चुका हो। यह हो सकता है कि कोई भी जीव अंतिम आवली में नहीं आया हो। क्यों? जैसे जन्म का अंतर पड़ता है, हमने देखा देवों में देवायु के साथ यानी वो तो देव में जन्मने वालों की अपेक्षा 24 मुहूर्त का अंतर पड़ सकता है, ऐसे नारकी में अलग। ये बंध आयु के बंध की अपेक्षा भी अगर बात करते हैं तो देवायु के बंध करने वालों में भी इतना अंतर पड़ता है, तो मरण की अपेक्षा भी इतना अंतर पड़ सकता है। या हमने देखा था वैकरिक मिश्र में कोई नहीं आया, ऐसा कितना तक हो सकता है? 24 मुहूर्त, 12 मुहूर्त, दोनों मिलकर 12 मुहूर्त होता है, अकेले देवों में 24 मुहूर्त हो जाता है। वैकरिक मिश्र तो नारकी में भी, यहाँ हम आयु अलग अलग सोच रहे हैं। तो देवायु जब यानी जब जैसे जन्म का अंतर है वैसा ही मरण का अंतर है, यानी कोई देव मरण के सम्मुख न हो ये 24 मुहूर्त तक बन सकता है। तो उसमें क्या होगा? एक भी जीव उसमें नहीं है तो सभी उदीरक कहेंगे। कभी कभी सभी उदीरक और एक अनुदीरक है, और कभी कभी बहुत अनुदीरक हो गए। इसलिए पेज नंबर 73 यहां बात नाना जीवों की अपेक्षा बात चल रही है। कल आप थे कि नहीं थे? नहीं थे। देखो यहाँ नाना जीव में भंग लगाते हैं, यानी सभी उदीरक है, कभी कभी क्या होता है सभी उदीरक और एक अनुदीरक है, कभी कभी सभी उदीरक और अनेक अनुदीरक होते हैं। अभी जहाँ एवं निद्रा जैसे उदीरक भी बहुत है और अनुदीरक भी बहुत है। साता असाता में उदीरक भी बहुत है अनुदीरक भी बहुत है, इस तरह से हम सोच सकते हैं। अब यहाँ बात हो रही है आयु की, तिर्यंच आयु। देखो अनुदीरक कौन है तिर्यंचों में, जो आवली यानी मरण के सम्मुख हुए वो। अब अनंत जीवों में हर समय कोई ना कोई मरने वाले यानी उसमें तो उदीरक भी है और अनुदीरक भी है। देवायु के लिए हर समय नहीं मरेंगे देव, बीच में अंतर पड़ सकता है, इसलिए सभी उदीरक है ये एक भंग हुआ। दूसरा भंग अनेक उदीरक है और एक ही अनुदीरक है। और तीसरा भंग उदीरक भी बहुत है और अनुदीरक भी बहुत है, बहुत यानी वो असंख्यात हो गए, जो छोटी संख्या है अवली का संख्या। ऐसा ही नारकायु में है। अब मनुष्यायु में भी ऐसा होना चाहिए ना कि सभी थोड़े मरण के सन्मुख है, परंतु दूसरी विशेषता क्या है मनुष्यों में, छठे तक ही आयु की उदीर्णा होती है, सातवें में वो सारे अनुदीरक कहलाएंगे। श्रेणी में कभी जीव नहीं भी हो परंतु तेरहवें गुण स्थान में भी आयु तो है, चल रही ना मनुष्य आयु का उदय तो है, परंतु सातवें और ऊपर के गुण स्थानों में सभी सत्ता होते हुए अनुदीरक। हमने एक नियम क्या लिया था, अनुदीरक कब कहेंगे, सत्ता है और उदीर्णा नहीं कर रहे। तो ऊपर के जो सारे गुणस्थान वाले हैं, अभी केवली भी हमेशा होगे, सातवें गुणस्थान में भी हमेशा होगे, तो मनुष्यायु में अनुदीरक भी हमेशा होगे और उदीरक तो हमेशा होगे ही होगे। मनीषा बेन कुछ विचार चल रहा है, समझ में नहीं उदय में आ रहे। उदीरणा का अर्थ के ऊपर के जो निषेकों में से कुछ परमाणु उदयावली में आ मिलना, उसको उदीरणा कहते। वो आयु की उदीर्णा छठे गुणस्थान तक है, ऊपर है ही नहीं है। तो ऊपर के गुणस्थानों में जितने जीव है उसको क्या कहेंगे, अनुदीरक है।
एक क्वेश्चन था।
हाँ, आपका क्वेश्चन है क्या है?
हम लोग ने आगे के पत्र आ रहा है, पेज नंबर 72 पे देखा, सातावेद्य के सभी जीव उदीरक है, तो ऐसा तो नहीं होगा ना?
क्या क्या क्या
सातावेद्य के सभी जीव उदीरक है, ऐसे उन्होंने एक पंग बताया,
एक उन्होंने त्रस जीवों में
कदाचित
सब उदीरक।
पर सातावेद्य में तो बहुत जीव अनुदीरक भी हो जाएगा ना, सातवें और तेरहवें गुण
ऊपर के गुणस्थानों में अनुदीरक कहेंगे। एक भंग बताया था ना नीचे के बाद, साता के त्रस जीव इन्हें प्रमाद युक्त, उसमें क्या लिखा देखो, प्रमादयुक्त यानी छठे तक की बात है, ऊपर की बात नहीं ली उन्होंने। एक शब्द डाला उन्होंने प्रमत्त तक। हाँ, प्रमत्त के ऊपर तो अनुदीरक रहेंगे ही रहेंगे। नरक में नरक आयु,
नरक में जैसे हम लोग ने देखा ना कि देवायु में वरण के सम्मुख न हो तो 24 तक।
हाँ, वैसे नरक में भी
वैसे ही है
कि नार के हर समय मरेंगे ऐसा नहीं है, बीच में गैप पड़ेगा, 24 मुहूर्त का गैप पड़ सकता है। ऐसे मनुष्यायु में भी पड़ता है, परंतु आयु की उदीर्णा छठे के उधर ऊपर नहीं है, इसलिए मनुष्यायु के लिए अनुदीरक भी हमेशा होंगे। हमने पहले देखा था मनुष्यायु देवायु और तिर्यंच आयु में, यानी जन्म की अपेक्षा वहां तो 24 मुहूर्त का अंतर पड़ सकता है उसके साथ जन्मने वालों में। नाना जीवों की अपेक्षा बात है, एक जीव की अपेक्षा नहीं, क्योंकि एक जीव की अपेक्षा तो अनंत काल तक मनुष्यायु न बांधे ऐसा हो सकता है, परंतु अनेक जीवों की अपेक्षा कोई मनुष्यायु न बांधे वही बात वो मरण के लिए लागू होती है। ये महाबंद पुस्तक पहले में बंध के यानी प्रकृति बंध के अंतर में हमने ये बात देखी थी, नाना जीवों की अपेक्षा प्रकृति बंध का अंतर सभी में 24 मुहूर्त लिया था, और तिर्यंचों में क्योंकि तीरंचों में तो अनंत है ना, तो हर समय मरने वाले भी है और आयु बांधने वाले भी है। आगे बढ़े, देखो ये 73 पेज नया पैराग्राफ, अभी पांचवी लाइन, आहारक शरीर और तीन अनुपूर्वियों को छोड़कर नाम कर्म की शेष परिवर्तमान प्रकृतियों के सब जीव नियम से उदीरक और अनुदीरक भी है। क्या कहना चाहते हैं? आहारक शरीर के हमेशा उदीरक होगे क्या? तो कहते नहीं होगे, कभी कभी इन्हें अनुदीरक ही बहुत होगे, उदीरक बीच में वर्ष पृथक का अंतर भी पड़ सकता है आहारक शरीर के बारे। अभी क्या कहते हैं? उसको छोड़ो और अनुपूर्वियों को भी छोड़ो। तीन अनुपूर्वियों को छोड़ा, तीन अनुपूर्विया कौन सी छोड़े? तीरंज गत्यानुपूर्वी को छोड़ा है, क्योंकि मनुष्यानुपूर्वी, देवानुपूर्वी और नारकानुपूर्वी में अंतर पड़ेगा। यानी लगातार उसमें जन्मेंगे ऐसा नहीं है, पर तीरंजों में हर समय कोई ना कोई मरने वाले जन्मने वाले होंगे। अनंत जीवों की बात है ना वहां पर, उसको छोड़कर की बात है। इसको छोड़कर यानी उसका अर्थ क्या है? तीरंज अनुपूर्वी में क्या होगा? नियम से उदीरक और अनुदीरक भी होंगे। आहारक शरीर और तीन अनुपूर्वियों के कदाचित सब जीव अनुदीरक, यानी कोई भी आहारक शरीर बनाया हुआ नहीं है। दूसरा भंग, अनुदीरक बहुत और उदीरक एक, यानी एक ही जीव ने आहारक शरीर बनाया है। तथा अनुदीरक बहुत व उदीरक भी बहुत है। उदीरक बहुत यानी संख्या जीवों ने आहारक शरीर बनाया, इसलिए बहुत कह दिया। क्या क्या? तीरंचायु के अनुदीर गत्यानुपूर्वी के अनुदीरक भी बहुत है। नहीं 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 नहीं, अरे पूरे जो जी रहे हैं। गत्यानुपूर्वी का उदय कब होगा? विग्रह गति में। जो विग्रह गति में, जो विग्रह गति में नहीं है वो सारे अनुदीरक है। हम आप कौन सा अकेला रुजु गति से क्यों ले रहे हैं? सभी जीव अनुदीरक है। उदय कब है? केवल विग्रह गति में। तो अरे नहीं होगा, परंतु बाकी सभी जीव जो लिविंग है उनको ले लो ना। ऐसा नहीं, देखो देखो यहाँ क्या कहते हैं। तीरंच अनुपूर्वी यानी विग्रह गति में हमेशा कोई ना कोई तीरंच गत्यानुपूर्वी होगी ही, तो वो उदीरक है और बाकी सारे अनुदीरक है। अकेला रुजु गति नहीं लेना सभी, क्योंकि गत्यानु तीरंज गत्यानुपूर्वी की सत्ता तो सभी के पड़ी है,
सभी देव नर
सभी सभी की है। नहीं 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 नहीं, यहाँ लिखा ना आहारक शरीर और तीन अनुपूर्वियों के कदाचित सब जीव अनुदीरक। सब यानी सत्ता वाले सब लेना। अब आहारक की सत्ता वाले मिथ्या तो में भी पड़े हुए होते हैं ना, जब तक उसकी उद्वेलना नहीं होती है। ऐसे कितने ही जीव वहां पड़े हैं, वो भी उनको क्या कहेंगे? सत्ता है पर उदीरना नहीं है। अब दूसरे मुनिराज है जिनकी सत्ता है परंतु उसका उदय नहीं है, उन्होंने नहीं बनाया आहारक शरीर, वो भी अनुदीरक कहलाएंगे। यानी सत्ता है पर उदीरना उदय नहीं है, वो सारे जीवों को लेना उसमें। हाँ सत्ता की बात है, जैसे अनुपूर्वी में भी सत्ता तो सबकी है। जैसे हम मनुष्य है, मनुष्य गति का उदय है, पर सभी अन्य गतियां और अनुपूर्वियां पड़ी है सत्ता में। ख्याल में है? अभी हमारे तीरंज गत्यानुपूर्वी की सत्ता है, हम उसके अनुदीरक है। हम चारों ही अनुपूर्वियों के अनुदीरक है। मिथ्या दृष्टि को तो बनती है, यहाँ उदय की बात चल रही है। हाँ, जो उदय रूप नहीं है वो सारे अनुदीरक है। हाँ, अनुदीरक है। देखो ऊपर क्या लिखा उन्होंने, तीन अनुपुरियों को छोड़ो, और बाकी जो शेष नाम कर्म की परिवर्तमान प्रकृतियां हैं, परिवर्तन ही नहीं, वो तो ध्रुवोदय को छोड़ दो कहते, परिवर्तमान जो है उनको, सब जीव नियम से उदीरक और अनुदीरक भी है, क्योंकि उनकी सत्ता होते हुए भी उसके अनुदीरक है, और किसी किसी के उदय है तो उदीरक है। ध्रुवोदय तो पहले लाइन में उन्होंने ज्ञानावरण के साथ बताया था, तेजस कारमान वर्णादि चार, तो गुरु लघु स्थिर स्थिर शुभ शुभ वगैरह वो ले आता उन्होंने, हास्यरति को नहीं लिया था। उसके तो नियम से उदीरक अनुदीरक हो। आगे बढ़े, यहां तक समझ में आई बात? आहार शरीर और तीन अनुपुरियों के लिए क्या लिखा, कदाचित सब जीव अनुदीरक, फिर अनुदीरक बहुत और उदीरक एक, क्योंकि देवानुपूर्वी नारकानुपूर्वी और मनुष्यानुपूर्वी, वे कब उदय होगा, जब मरकर जीव उस पर्याय में जा रहे हैं विग्रह गति के साथ। यहाँ तो जन्मने का भी अंतर पड़ता है, एक एक गति में लेंगे तो 24 मुहूर्त का तो अंतर पड़ेगा वहां पर, और उसमें भी कोई रुजु गति से जाएंगे तो उनके भी उदय नहीं होगा, तो कंडीशन क्या है, मोड़ सही जाने वाले चाहिए, तो उसमें जरूर अंतर पड़ेगा। अंतर पड़ेगा उसका अर्थ क्या है, उसके अनुदीरक ही रहेंगे, कभी कभी उसके उदीरक होंगे, इसलिए तीन भंग बताए। तिरंज गति में निरंतर कोई ना कोई उत्पन्न होने वाले हैं। देखो कदाचित सब जीव अनुदीरक, एक भंग हुआ। दूसरा भंग अनुदीरक बहुत और उदीरक एक, और तीसरा भंग अनुदीरक बहुत और उदीरक भी बहुत, बहुत यानी यथा योग्य जो वहां एक साथ जन्म सकते उसके लिए लेगा। इस प्रकार से तीन भंग है, ऊंच व नीच गोत्रों के नियम से बहुत उदीरक और बहुत अनुदीरक भी होते हैं, क्योंकि हमने देखा देव और मनुष्य में, मनुष्यों में तो उच्च नीच दोनों है, पर देवों में तो हमेशा उच्च गोत्र का ही उदय है, बहुभूमि के है, या मनुष्यों में भी ऊपर के गुणस्थानों में, नीचे के गुणस्थानों में भी दोनों उच्च नीच दोनों गोत्र होते हैं, तिरियंच और नारकियों के नीच ही होता है, इसलिए नीच के भी उदीरक हो गए हमेशा, उच्च के भी उदीरक होते, दोनों के अनुदीरक भी हो गए। इस प्रकार नाना जीवों की अपेक्षा भंग विचय समाप्त हो, ये समझ में ना, उदीर यहाँ तो नाना जीवों की अपेक्षा हमको सोचना है, पहले जो हमने सब घटित किया था वो एक जीव की अपेक्षा काल अंतर की बात देखी थी, अब देखो यहाँ नाना जीवों की अपेक्षा काल की प्ररूपणा करेंगे। ये जो हमने भंग देखा उसके अनुसार हमको काल भी देख सकते हैं, कि जहां हमेशा हमेशा उदीरक कहेंगे तो वह सदाकाल कहेंगे। नाना जीवों की अपेक्षा काल की प्ररूपणा की जाती है। आहारक शरीर तीन अनुपूर्वी, ती वह हुए तीन अनुपूर्वी और सम्यक मिथ्यात्व को छोड़कर शेष सब कर्मों के उदीरक सब काल रहते हैं। उसमें कितना अंतर पड़ता है वो अंतर की प्ररूपणा में बताएंगे, क्योंकि आहारक शरीर और समय मिथ्यात्व तो उसके मार्ग नाम का अंतर हम समझ सकते हैं, और अनुपूर्वी में हमने देखा था वहां जन्मने का जो अंतर पड़ेगा उसको लेना है। अब आहारक शरीर के उदीरक यानी जो उदीरणा करने वाले हैं वो लगातार कितने काल तक उदीरणा करेंगे, एक जीव अंतर्मूर्त, एक के बाद दूसरा आया, दूसरे के बाद तीसरा आया, तो भी सबका मिलकर भी अंतर्मूर्त होगा। तो कहते कि आहार शरीर के उदीरक जघन्य व उत्कर्ष से अंतर्मूर्त काल रहते, ये जघन्य वाला एक अंतर्मूर्त यानी उसका एक जीव के लिए आहार शरीर का जितना काल है उतना, और अनेक जीव एक के बाद एक के बाद एक के बाद आते रहे तो उतना मिलकर भी अंतर्मूर्त ही होगा। तीन अनुपूर्वियों के उदीरक, उदीरक लिया, अनुदीरक हमेशा हो सकते हैं। अभी उदीरणा करने वाले का अर्थ क्या है, उसकी उदीरणा कब होती है, अभी देव में जाने वाले एक या दो मोड़ से सही जा सकते हैं। हम देवायु की बात अनुपूर्वी के कहते हैं, देवानुपूर्वी के। तो कोई जीव एक देव में जन्मा, उसके बाद दूसरा जन्म, उसके बाद तीसरा जन्म, तो अनुपूर्वी का लगातार किसी न किसी के उदीर्णा होती रही। तो हमने देखा था कितने जीव एक के बाद एक जन्म सकते हैं, अवली की संख्या थे। देखो, तीन अनुपूर्वियों के उदीरक जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से आवली के असंख्यात वे भाग काल तक रहते हैं। बाद में उसमें अंतर पड़ेगा ही पड़ेगा, और उत्कृष्ट अंतर वो अंतर की प्ररूपणा में देखेंगे, अभी नहीं करेंगे। सम्यक मिथ्यात्व के उदीरक जघन्य से अंतर्मूर्त और उत्कर्ष से पल्लवपुंग के असंख्यात वे भाग तक रहते। ये क्यों ऐसा कहा? क्योंकि देखो, अनुपूर्वी में तो एक या दो ही समय थे, यहाँ पर भी लगातार आते रहे तो आवली के असंख्यात पे भाग ही जीव समय मिथ्यात्व को प्राप्त करेंगे, पर एक जीव अंतर्मूर्त तक रहेगा, फिर दूसरा आया वो अंतर्मूर्त रहा, फिर तीसरा आया वो अंतर्मूर्त रहा। तो आवली के असंख्यात पे भाग के लिए हरेक के अपने अपने अंतर्मूर्त, तो सब मिलकर पल्ले का असंख्यात्व भाग होता है, ये उसका अर्थ है। हमने देखा समय मिथ्यात्व का लगातार काल भी इतना है, अंतर देखेगी वो भी करीबन उतना ही है। इससे उदीर्णा का लगातार उदीरक नाना जीवों की अपेक्षा लगातार उसका काल कितना है? पल्ले का संख्या। देखो, पहले हमने काल देखे थे एक जीव की अपेक्षा देखे थे, और यहाँ अनेक जीवों की अपेक्षा देख रहे हैं। नाना जीवों की अपेक्षा सम्यक मिथ्यात्व का जघन्य उदीर्णा काल स्तोक है। उसी का द्रव्य असंख्यात गुणा है, उसी का उत्कृष्ट उदीर्णा काल असंख्यात गुणा है। नाना जीवों की अपेक्षा सम्यक मिथ्यात्व की उदीर्णा का उत्कृष्ट विरह काल, जिसको हम अंतर कहते हैं, वो असंख्यात गुणा है। इस प्रकार नाना जीवों की अपेक्षा काल की प्रवृत्ति। देखो, ये क्या कहना चाहते हैं? सम्यक मिथ्यात्व का जघन्य उदीर्णा काल स्तोक है, कितना है? एक अंतर्मूर्त। क्योंकि एक ही जीव आया और एक ही अनेक जीव एट ए टाइम आ गए, और उन्होंने उसमें जघन्य काल बिताया और वो दूसरे गुण स्थान को प्राप्त हुए, तो जघन्य उदीर्णा काल स्तोक है, वो अंतर्मूर्त है। अश्विन भी उसका अर्थ क्या? उसी का द्रव्य असंख्यात गुणा है। नंबर ऑफ जीव, टोटल जीव, आवली के असंख्यात विभाग नहीं, उसमें जीव कितने हो गए? पल्ले के असंख्यात विभाग हो गए। एट ए टाइम कितने आ सकते हैं? ना, तीसरे गुणस्थान के अवहार काल सबके पल्ले के असंख्यात विभाग देखे थे, दूसरे गुणस्थान में भी पल्ले के असंख्यात विभाग जीव है, तीसरे में भी उतने हैं, चौथे में भी उतने हैं, पर उनकी संख्या अलग अलग है, आपको याद होगा। तो यानी ये सभी पल्ले का असंख्यात भाग है, पर एक से दूसरा ज्यादा है, यानी द्रव्य असंख्यात गुणा है, कितना है? तो पल्ले का असंख्यात भाग। अगर उसको भी, क्योंकि सम्यक मिथ्यात्व का उदीर्णा काल स्तोक है, वो अंतर्मूर्त है, अंतर्मूर्त यानी संख्या तावली है, और इसको अगर आवली का असंख्यात्व भाग कहेंगे तो उसके असंख्यात्व भाग कहेंगे, ख्याल में है ना? असंख्यात गुणा कह रहे। फिर से जघन्य काल कितना है? अंतर्मूर्त, अंतर्मूर्त यानी संख्या तावली होगी, द्रव्य यानी नंबर ऑफ जीव, तीसरे गुणस्थान में टोटल नंबर ऑफ जीव कितने हो सकते हैं? तो पल्ले के असंख्यात भाग। हाँ, उसको अगर आवली का असंख्यात्व भाग अगर मानते हैं हम, तो जघन्य उदीर्णा काल के असंख्यात भाग प्रमाण हो जाएंगे, तो तीनों संख्या पल्ले के असंख्यात भाग है। कौन सी? वहां की जीवों की संख्या भी पल्ले के असंख्यात भाग है, वो लगातार उदीर्णा काल भी पल्ले का असंख्यात भाग है, और उसमें अंतर पड़ेगा वो भी पल्ले का असंख्यात भाग है, पर उसमें जो अल्पभूत्व है, तो द्रव्य जितने हैं उससे असंख्यात गुणा उदीर्णा का काल है उत्कृष्ट, और उससे असंख्यात गुणा उत्कृष्ट अंतर है, बराबर है ना? हाँ, चलो, अच्छा है। तीसरे गुण स्थान में पल्ल्य का असंख्यात विभाग संख्या है, पल्ल्य के असंख्यात विभाग हमने देखा दूसरे में भी होते, तीसरे में भी और चौथे में भी इतनी संख्या है। वो यथा योग्य हर एक का जो असंख्यात जिस संख्या से भाग दे देते ना, इसको आवहार काल अलग अलग देखा था हमने, आपको याद होगा वो हमने धवला की तीसरे पुस्तक में या द्रव्य प्रमाणानुगम तीसरी पुस्तक में बहुत विस्तार से देखा था इसको। आगे देखते देखो इस प्रकार नाना जीवन की अपेक्षा काल की प्रवृत्तना समक्ष, ये समझ में आई बात। द्रव्य असंख्यात गुणा कहा वो भी पल्ले का असंख्यात भाग था, उत्कृष्ट जो उदीर्ण का काल पल्ले का असंख्यात भाग, परंतु वो उससे असंख्यात गुणा है, द्रव्य से असंख्यात गुणा है। और तीसरा जो उत्कृष्ट अंतर वो भी उससे असंख्यात गुणा, फिर वो सामान्य कथन क्या है पल्ले का असंख्यात। अब नाना जीवन की अपेक्षा अंतर का कथन किया जाता है, जिसमें हमने विशिष्ट काल देखा कैसे आहारक के लिए, तीन अनुपूर्वी के लिए और अभिसमय मिथ्यात्व के लिए, उसमें उसका अंतर भी बताएंगे। नाना जीवन की अपेक्षा अंतर का कथन किया जाता है, सम्यक मिथ्यात्व की उदीर्णा का अंतर काल जघन्य से एक समय। देखो एक समय कैसे सोचना, कोई जीव सम्यक मिथ्यात्व में आया, उसमें अंतर्मृत काल बिताया और वो अन्य गुणस्थान को चला गया, पहले में गया या चौथे में गया। एक समय के लिए कोई तीसरे में नहीं आया, एक समय को छोड़कर और कोई जीव तीसरे में आ गया, ख्याल में ना। अंतर को कैसे सोचना है, नाना जीवन की अपेक्षा अंतर लेना है। एक जीव की अपेक्षा अंतर वो मिथ्यात्व में जाएगा, अंतर्मूर्त में फिर दोबारा आएगा, तो जघन्य अंतर अंतर्मूर्त होगा। क्यों क्या क्या सासाधन का नहीं, सम्यक मिथ्यात्व का जघन्य अंतर अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट अर्धपुद्गल। फिर से ये किसकी अपेक्षा है, अनेक जीवों की अपेक्षा। अनेक जीवों ने कोई एक जीव तीसरे में आया, उदीर्णा करता रहा, तीसरे में रहने का काल कितना है मिनिमम अंतर्मूल, फिर वो चौथे में या पहले में चला गया। यानी अभी तीसरे में कोई जीव नहीं है, एक समय के लिए कोई भी जीव तीसरे में नहीं है, अंतर पड़ा। फिर नेक्स्ट समय में कोई जीव तीसरे गुणस्थान को प्राप्त हुआ, तो अंतर कितना हुआ एक समय का। यानी कोई भी जीव तीसरे में नहीं था ये कितने काल तक हुआ, एक समय के लिए, तो एक समय का अंतर पड़ा। फिर दो समय का अंतर होता है, तीन समय का अंतर होता है, घंटे भर का अंतर होता है, तो मैक्सिमम कितना होगा, तो पल्ले का संख्या तक। देखो सम्यक मिथ्यात्व की उदीर्णा का अंतरकाल जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से पल्योपम के असंख्यातवे भाग प्रमाण है। आहारक शरीर की उदीर्णा का अंतरकाल जघन्य से एक समय, किसी मुनिराज ने आहारक शरीर बनाया तो आहारक शरीर नाम कर्म का उदय उदीर्णा चालू हो गए। अभी वो फिर मूल शरीर में लौट आ गए, एक समय के लिए किसी ने नहीं बनाया था, एक समय के अंतर से और किसी मुनिराज ने फिर बनाया, तो एक समय होगा। हमने एक जीव की अपेक्षा अंतर्मूर्त देखा था, कल आपको नवाई लगी कि वही जीव फिर दोबारा आहारक शरीर बनाता है, तो उसके लिए अंतर्मूर्त के अंतर से उसने उसी जीव ने फिर बनाया था। यहाँ अलग अलग जीवों की अपेक्षा हमको बात करना है, तो एक समय का अंतर होता है। और उत्कर्ष से संख्यात वर्ष प्रमाण है, जिसको पृथक वर्ष कहते हैं उसी को यहाँ संख्यात वर्ष कहा। अभी संख्यात का प्रमाण कैन बी एनीथिंग, अभी वो तो यथा योग्य केवलीगम में। तीन अनुपूर्वियों की उदीर्णा का अंतरकाल, तीन का अर्थ होता है अलग अलग सोचना, तीनों का मिलकर नहीं लेना। देवानुपूर्वी अलग सोचो, मनुष्यानुपूर्वी अलग सोचो, नारकानुपूर्वी अलग सोचो। जघन्य से एक समय, यानी कोई जीव देवों में उत्पन्न हुआ, नेक्स्ट समय में कोई नहीं उत्पन्न हुआ, फिर और कोई उत्पन्न, यानी वो विग्रह गति में कोई नहीं है, ऐसा लेना। वैकरिक मिश्र में भी ये घटित करते, पर हमें वैकरिक मिश्र से कोई मतलब नहीं, अनुपूर्वी का उदय मोड़ सहित जाने वाले जीवों के लिए होगा। तो कोई जीव वो मोड़ में है ही नहीं, अभी पहुंच गया वहां, अनुपूर्वी का उदय किसी के नहीं, एक समय के लिए कोई नहीं आया, फिर नेक्स्ट समय में कोई ना कोई जीव उसमें आ गया, तो एक समय का अंतर पड़ा। और उत्कर्ष से 24 मुहूर्त प्रमाण है ना, जो मरण का हमने आवली का देखा था अंतर, वही जन्मने का भी अंतर है। देखो इन्हें कितना ये जिसको कहेंगे कि साइंटिफिक कहो या हमने वो आयु बंधने वालों में भी इतना ही अंतर देखा था, अब वहां मरकर जाने वालों में भी इतना अंतर, और वहां से मरकर अन्य गति में जाने वाले में भी इतना अंतर 24 मुहूर्त का। हाँ यानी उसका निमित्त बनते हैं, देवायु बांधी है तो वहां जाएंगे, परंतु वो तो जन्मने में भी इतना मैक्सिमम अंतर पड़ सकता है। हाँ देखो देखो, शेष कर्मों की उदीर्णा का अंतरकाल संभव नहीं, क्योंकि नाना जीवन की अपेक्षा हम बात कर रहे हैं, यानी किसी ने ये जो है ना उसमें जो उदय का जो नियम है, बाकी सभी कर्मों की हमेशा ही उदीर्णा करने वाले जीव होंगे, नाना जीव की बात। इस प्रकार अंतर समाप्त हुआ तो तीर्थंकर हमेशा होगे कि नहीं होगे, उसकी उदीर्णा करने वाले होगे कि नहीं होगे, तेरहवें गुणस्थान वाले हमेशा होगे कि नहीं होगे, तो उदीर्णा करने वाले है ना वो। हाँ तीर्थंकर हमेशा होते आप स्वीकार करते हैं, तो तीर्थंकर होते हैं नहीं, तीर्थंकर प्रकृति का उदय बिना तीर्थंकर होते हैं क्या? हमने जरा उल्टा प्रश्न पूछा तो गड़बड़ी हो गई। देखो नहीं नहीं ऐसे सोचो, तीर्थंकर प्रकृति का उदय कब है? तेरहवे में लगातार उदय है, और तीर्थंकर हमेशा हो गए, तीर्थंकरों में कभी गैप नहीं होगी। अभी तो 20 तो है ना, अभी यहाँ नहीं है मनु, वहां 20 है ना अभी हमारे वीर विद्यमान तीर्थंकर, तो उनके उसके उदीर्णा चल रही है कि नहीं? तो उदीरक हमेशा होगे, आहारक में ऐसा नहीं लिया था, आहारक बनाने वाले हमेशा होते ऐसा नहीं कहा, तीर्थंकर हमेशा रहेंगे तो उसके उदीरक भी हमेशा रहेंगे। ये सभी कर्मों में लगा लेना, आपको जितनी याद है वो सब लगा लेना। कौन सी छोड़ी हमने याद है? आहारक। हाँ आहारक शरीर नाम का तीन अनुपूर्व सम्मिलित। अभी आगे देखते देखो, ये अंतर हो गया। अब सन्निकर्ष दो प्रकार का है, सन्निकर्ष की बात अभी देखेंगे। स्वस्थान सन्निकर्ष और परस्थान सन्निकर्ष। सन्निकर्ष करते एक है तो दूसरे का उदेरक है कि नहीं है? जैसे ज्ञानावरणी की कितनी प्रकृतियां हैं? पांच। जो मति ज्ञानावरण की उदीर्णा करने वाला है वो अन्य चार की उदीर्णा करेगा कि नहीं करेगा? बोलो। हाँ नियम से करेगा। देखो स्वस्थान सन्निकर्ष और परस्थान सन्निकर्ष। यहाँ स्वस्थान सन्निकर्ष प्रकृत है, यानी एक एक जो मूल प्रकृतियों के जो उत्तर भेद है ना उसमें हमने एक साथ कौन से करते हैं उसकी बात करेंगे। एक है तो दूसरी हो रही है कि नहीं हो रही? मति ज्ञानावरणी की उदीर्णा करने वाला शेष ज्ञानावरणियों की नियम से उदीर्णा करता है, इसी प्रकार पृथक पृथक शेष चार ज्ञानावरणीय प्रकृतियों के आश्रय से सन्निकर्ष का कथन करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप कैसा कहेंगे? आप ऐसा सोचना, श्रुत ज्ञानावरण की उदीर्णा करने वाला नियम से क्या होगा? शेष चार ज्ञानावरण की उदीर्णा करना कर रहा है, सबका उदय एट ए टाइम चल रहा है, अवधि ज्ञानावरण की उदीर्णा करने वाला अन्य चार की उदीर्णा करता है नियम से, मन परे ज्ञानावरण की उदीर्णा करने वाला आप हम कर रहे कि नहीं कर रहे? कर रहे। मन परे ज्ञानावरण की बात चल रही, केवल ज्ञानावरण की उदीर्णा हम कर रहे, तो अन्य चार की कर रहे कि नहीं कर रहे? ख्याल में ये तो आसान है ना, क्योंकि उसकी पांचों का उदय चल रहा है। अभी दर्शन आवरण में लगा लो, उसमें लगा लो।
चक्षु दर्शन तीन दर्शन आवरण की उदीर्ण
नियम से करते हैं, और बाकी की
ऑप्शनल है।
अब एक निद्रा की उदीर्ण करने वाला क्या कर रहे हैं?
एक निद्रा की उद्दीर्ण करने वाला चार दर्शनावरण के नियम से उद्दीर्ण करता है।
हाँ।
और बाकी की नहीं करता,
बाकी निद्रा की नहीं
नहीं करता है।
अभी हम पढ़ेंगे, पढ़ने के पहले थोड़ा हमारा माइंड बना लेते हैं। देखो आगे अभी दर्शनावरण में भी एक एक क्यों लगा ले। चक्षु दर्शनावरणीय की उद्दीर्ण करने वाला, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण और केवल दर्शनावरण का नियम से उद्दीर्ण होता है, क्योंकि हमने देखा नहीं वो चार की तो उदीरण तो एक साथ चलते ही चलेगी। शेष पांच दर्शनावरण प्रकृतियों का कदाचित उदीरक होता है, यानी निद्रा का, निद्रा संबंधी कुछ एक। इसी प्रकार से चक्षु दर्शना, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण और केवल दर्शनावरण के आश्रय से सन्निकर्ष की प्ररूपना करना चाहिए। देखो पहले हमने महाबंध में जो सन्निकर्ष देखे ना, वो बंध में देखे थे, आपको याद होगा। तो यहाँ उदय में लगा रहे हैं, ये उदीर्ण का प्रकरण उदय संबंधी बहुत सी क्लैरिटी हो जाती है इसमें। अब निद्रा की उदीर्ण करने वाला पिछली चार प्रकृतियों का नियम से उदीरक और शेष आगे की प्रकृतियों का नियम से अनुदीरक होता है। इन पिछली चार ने चक्षु दर्शन अवधि दर्शन और केवल दर्शनावरण का नियम से उदीरक है, और एक निद्रा की उदीरक है, तो प्रचला की निद्रा, निद्रा प्रचला, प्रचला स्नान गुधरी का वो अनुदीरक है। ऐसे ही जो निद्रा संबंधी एक एक प्रकृति को लेकर, ऐसा ही समझना कि एक किसी निद्रा का उदीरक है, प्रचला का होगा तो चार का तो उदीरक है और अन्य शेष अन्य निद्राओं का अनुदीरक है। तो कहते इसी प्रकार प्रचला निद्रा, निद्रा प्रचला, प्रचला और स्त्यान वृद्धि प्रकृतियों का आश्रय करके अलग अलग सन्निकर्ष का कथन करना चाहिए। अभी ज्ञानावरण हुआ, दर्शनावरण हुआ, अब वेदिनी की बात करते हैं। साता वेदिनी का उदीर्ण करने वाला असाता का अनुदीरक और असाता की उदीर्ण करने वाला साता का अनुदीरक होता है। ये तो नेचुरल है ना, क्योंकि एक जीव को एट ए टाइम एक किसी का उदय होगा, दोनों का एट ए टाइम नहीं होता है। तो जिसका उदय उसका उसकी उदीर्ण चलती है। मिथ्यात्व की उदीर्ण करने वाला सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व का अनुदीरक, क्या कहा? मिथ्यात्व की उदीर्ण करने वाला कौन है? पहले गुण स्थान में, तो उस समय अन्य दो की उदीर्ण नहीं हो रही है। तथा अनंतानुबंधी का कदाचित उदीरक और कदाचित अनुदीरक होता है, ऐसा क्यों कहा? देखो वैसे तो मिथ्या तो गुणस्थान में अनंत, हाँ अनंतानुबंधी की तो उदय होता ही है, तो उसकी उदीरण भी चल रही है, परंतु हमें ऐसा भी जीव मालूम है कि जो वेदक सम्य दृष्टि अनंतानुबंधी की विसंयोजना करता है। विसंयोजना का अर्थ क्या है? सत्ता में से नष्ट हो जाता है। अब ऐसा जीव मिथ्यात्व में तो आ सकता है, मिथ्यात्व में आए क्योंकि मिथ्यात्व की सत्ता पड़ी है, मिथ्यात्व में आ गया। अभी अनंतानुबंधी की सत्ता नहीं थी, मिथ्यात्व में आते ही अनंतानुबंधी का नया बंध शुरू हुआ, पर बंध के बाद आवली तक उसमें कुछ नहीं हो सकता। दूसरी बात, वो जो बंध भी हो रहा है ना, तो नए बंधने के साथ वहां जो संक्रमण भी होता है, किसका? प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन का अनंतानुबंधी संक्रमण भी होता है, पर जैसे बंधना बंधावली होती है वैसे संक्रमणावली भी होती है। जिसका संक्रमण हुआ है उसके आवली काल तक उसमें कुछ नहीं हो जाता। अभी यहाँ क्या होगा? नया बंध भी है और सब जो कुछ है, आवली के पश्चात उसका उदय शुरू होगा, तो उदय नहीं तो उसकी उदीर्णा भी नहीं है। यानी मिथ्यात्व का उदय है यानी उदीर्णा है, और अनंतानुबंधी की उदीर्णा नहीं है। ये कब होता है? अनंतानुबंधी की विसंयोजना वाला जीव जो पहले गुणस्थान में आया है, तो मिथ्यात्व की उदीर्णा होते हुए भी अनंतानुबंधी का अनुदीरक है। बाकी सारे अनंत जीव तो उसकी उदीर्णा करने वाले हैं, परंतु कुछ गिने चुने जीव ऐसे भी होंगे कि उसके अनुदीरक है। फिर से इसको पढ़ते देखो, मिथ्या तो की उदीरणा करने वाला ये जो है ना, सम्यक तो असम्यक मिथ्यात्व का अनुदीरक है, वो तो नियम है, तथा अनंतानुबंधी का कदाचित उदीरक है, वो भी समझ सकते हैं। कदाचित अनुदीरक होता है, ये अनुदीरक के लिए क्या है, अनंतानुबंधी का विसंयोजना करके मिथ्यात्व में आया है और आवली काल तक उसकी अनुदीरणा होती है, आवली तक उसकी उसका उदय उदीरणा नहीं। आप कहेंगे उदय नहीं है, पर तब तक उदीरणा होने दो ना, तो ऐसा नहीं होता है। आगे लिखा है, क्योंकि अनंतानुबंधी कषायों का संयोग हो जाने पर, विसंयोजना के बाद संयोजना हुई उसको कहते हैं, संयोग के समय से लेकर आवली मात्र काल तक उदीरणा संभव नहीं है। ये बंधावली कहो या संक्रमणावली कहो, दोनों उसमें इंक्लूडेड है। यदि उनका उदीरक होता है तो क्रोध मान माया और लोभ का कदाचित उदीरक होता है। क्या कहते हैं, अनंतानुबंधी का उदीरक है कहेंगे, तो अनंतानुबंधी मिथ्यात्व का उदीरक है तो उसके साथ अनंतानुबंधी का उदीरक होगा, उदीरणा करने वाला होगा, या तो क्रोध की करेगा या मान की या माया की या लोभ की, क्योंकि एट ए टाइम एक किसी का एक कषाय का उदय है। अनंतानुबंधी का उदय नियम से ऐसा कहेंगे, पर अनंतानुबंधी तो जनरल कह दिया, उसमें एक एक प्रकृति अलग सोचो, तो क्रोध का होगा या मान का या माया का या लोभ का। देखो यानी क्या ना, यदि उदीरक होता है तो क्रोध मान माया और लोभ का कदाचित उदीरक होता है। नाना जीवों की अपेक्षा कोई ना कोई कषाय का उदीरक होगा, परंतु हम एक जीव की बात करें उसका सन्निकर्ष देख रहे हैं। अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान, वह संज्वलन कषायों का नियम से उदीरक होता है, यानी जो मिथ्यात्व का उदीरणा करने वाला, क्योंकि उसके अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन चारों का उदय है, तो उस सबकी उदीरणा कर रहा है।
मोहनी की टोटल
फिर पूछो,
मिथ्यात्व के उदीरणा करता है तो उसको टोटल मोहनी के कितनी प्रकृति का उदीरणा हो रहा है?
हाँ, आप उदय का कूट बोलो मोहनी का।
9, 10, 11 और 12।
12 बोलो कौन से?
नहीं, भैजू गुप्ता के साथ
मैक्सिमम 10 ही हो सकते हैं।
हाशियरती नहीं तो हाशियरती आरती सौ पे से दो
उदय का कूट मालूम है कि नहीं?
हाँ हाँ हाँ।
देखो
मिथ्यात्व
मोहनी के उदय कैसे लिखते हैं, एक मिथ्यात्व का उदय है, पहले गुणस्थान की बात, अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संयोजन, चार क्रोध या चार मान या चार माया या चार लोभ। अब ये चार के बदले 3 हो सकता है विसंयोजना के लिए, पर उसकी बात हम बाद में करेंगे। अब 3 वेद में से किसी एक का वेद का उदय है, स्त्री वेद पुरुष वेद या नपुंसक वेद, कोई भी एक वेद का युगल एक किसी का उदय है, हास्यरति का होगा या शोक अरति का होगा, भय में दोनों का ही उदय होगा, अकेले भय का होगा, अकेले जुब उसका होगा या जीरो का होगा। अभी हमको क्या करना है, हर एक लाइन में से एक एक को चुनना है, मैक्सिमम अगर है तो 1, 4, 5, 6, 2, 8 और 2, 10 होता है, या किसी के 9 का उदय होगा और किसी के 8 का होगा, और 7 का हो सकता है, क्योंकि इसमें अगर अनंतानुबंधी की विसंयोजना करके आया है तो यहाँ उसके 3 ले सकते हैं। तो इसमें 7 या 8 या 9 या 10 ऐसे 4 बातें हो सकते हैं। ख्याल में आई बात? और दूसरे गुणस्थान में ये चला जाएगा, अपन ये 4 नियम से हो गए, वहाँ 3 का भंग नहीं है, तो वहां कैसे हो गए 4, 1, 5, 2, 7, 8 या 9, 3 ही हो गए। इस तरह से मोहनीय के उदय रूप प्रकृतियां कितनी हो सकती है, उसके ये भंग निकालने का तरीका है। अब आगे देखते हैं। यह बात हमने देखी कि मिथ्यात्व का उदीरक है। देखो अभी देखो ना, हमारा उदय का कुट ये है, मिथ्यात्व का उदीरक है वो क्रोध, यानी अनंतानुबंधी क्रोध, अप्रत्याख्यान क्रोध, प्रत्याख्यान क्रोध, संज्वलन क्रोध। 16 का होगा, 16 का नहीं, ये 4 का होगा या 3 का होगा। यदि अनंतानुबंधी की विसंयोजना करने वाला हो तो की बात है, एक वेद का उदीरक होगा, एक युगल का, और भय में, भय जुगुप्सा में तो हमने ऑप्शन देखे। देखो अभी यहां से पढ़ेंगे हम, ऊपर का पैराग्राफ 75 पेज पर देख रहे थे। देखो ये वहां से छठी लाइन पढ़ी हमने, अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान वो संजलन कषायों का नियम से उदीरक होता है, फिर भी इन 12 कषायों में हर एक के 4-4 लिए ना, क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यान के 4, प्रत्याख्यान के 4, संज्वलन के 4, इन 12 में से एक एक की अपेक्षा कर कदाचित उदीरक होता है, यानी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन तीनों का कदाचित क्रोध का उदीरक है, कदाचित मान का, कभी कदाचित माया का, कदाचित लोभ का। 3 वेद हास्य रति अरति शोक का कदाचित उदीरक होता है, यानी 3 वेद में से कोई ऑप्शनल हास्य रति का होगा या अरति शोक का होगा, इसलिए कदाचित उदीरक कहा, क्योंकि उसका उदय भी परिवर्तमान है, परंतु वेद का उस भव में तो परिवर्तमान नहीं है वैसा, परंतु 3 वेदों में से किसी एक वेद का एवं हास्य रति और अरति शोक इन युगलों में से किसी एक युगल का नियम से उदीरक होता है, वह भय और जुगुप्सा का कदाचित उदीरक होता है। कदाचित कहा, क्योंकि कभी कभी दोनों का ही उदय है, कभी एक एक का उदय है, कभी दोनों का ही नहीं है। देखो अभी हमको क्या सोचना है, किसी एक प्रकृति का उदय, उदय ने उदीरना की हम बात सोच रहे हैं, उस समय अन्य कर्मों की क्या पोजीशन है, और ये हम मोहनिया का मोहनिया में लगा रहे हैं। अभी ज्ञानावरण के लगा लिया आपस में, दर्शनावरण का लगा लिया आपस में, वेदनीय एक किसी का उदीरक होगा, साता का उदीरक हो वो असाता का नहीं होगा, असाता का है वो साता का नहीं होगा। मोहनिया में हमने क्या देखा था, मिथ्यात्व की बात देखी, मिथ्यात्व के साथ किस किस का उदीरक है वो बात देख ली। अब कहते सम्यक प्रकृति की उदीरणा करने वाले के साथ, तो सम्यक प्रकृति की उदीरणा करने वाले यानी ये कौन सा जीव है, हाँ 4 से 7। अभी जहां हमने मिथ्यात्व लिखा है, ये उदय के कुट पर मैं समझा रही हूँ, जहां मिथ्यात्व लिखा है इसके बदले यहाँ सम्यक प्रकृति है, तो चौथे गुणस्थान वाले की बात पहले देखते हैं। तो चौथे गुणस्थान में अनंतानुबंधी का उदय होगा क्या, नहीं होगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे चौथे के लिए। वैसे सम्यक प्रकृति का उदय चौथे वाले को भी है, पांचवे वाले को होगा वहां 2 लिखना पड़ेगा, छठे सातवें वाले में 1 लिखना पड़ेगा। तो अभी तो हमने चौथे वाले की बात की, उसके तीनों वेदों में से किसी एक वेद का उदय होगा कि नहीं होगा, बंद की बात नहीं, उदय की बात है, और इसमें से भी हास्य रति या शोक रति और भय की भी वही पोजीशन। तो चौथे गुणस्थान वाले का यहाँ पहले हमने पहले में मिथ्यात्व लिया था, यहाँ सम्यक प्रकृति लेना है और अनंतानुबंधी को नकाल देना। अभी पढ़ेंगे देखो, सम्यक प्रकृति की उदीरणा करने वाला मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व अनंतानुबंधी का नियम से अनुदीरक है, क्यों ना वहां मिथ्यात्व का उदय है, न सम्यक मिथ्यात्व का है, न अनंतानुबंधी का है। परंतु अप्रत्याख्यान व प्रत्याख्यान कषायों का कदाचित उदीरक होता है, यदि वह उनका उदीरक है तो 8 कषायों का कदाचित उदीरक होता है। चार चार लेना ना, अप्रत्याख्यान के 4, प्रत्याख्यान के 4, वो बाद में बताएंगे। ऊपर कैसे लिखा, 12 में एक एक की अपेक्षा करके, वैसे यहाँ 8 में एक एक की अपेक्षा करेंगे। तो दो क्रोध या दो मान इस तरह से लेना, कदाचित इसी शब्द लिया है। संज्वलन का नियम से उदीरक होता है, किंतु वह उसी की यानी संज्वलन चार कषायों का कदाचित उदीरक होता है, कदाचित यानी उसमें से एक एक की बात है। देखो देखो यहाँ क्या शब्द डाला है, अप्रत्याख्यान, इसका अर्थ आप समझाएंगे कोई? अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान कषायों का कदाचित उदीरक होता है, ऐसा क्यों लिखा? देखो देखो सातवें गुणस्थान वाला, छठी सातवें गुणस्थान वाला अकेले संज्वलन का है, संज्वलन के लिए नियम से उदीरक का, सम्यक प्रकृति का उदीरक तो चौथे से सातवें तक है, इसलिए संज्वलन के लिए तो नियम से उदीरक है, भले वो चौथे वाला हो या पांचवे वाला हो या छठे वाला या सातवें वाला है, संज्वलन का उदीरक तो है ही है, परंतु जो पांचवे में है वो संज्वलन के साथ प्रत्याख्यानावरण का भी उदीरक है, और जो चौथे में है वो अप्रत्याख्यान भी प्रत्याख्यान भी संज्वलन, इसलिए सम्यक प्रकृति के साथ हमको लगाना है, तो जिसके सम्यक प्रकृति की उदीरना चल रही है उसके अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान वो ऑप्शनल है, फिर से इसलिए कदाचित शब्द डाला। कदाचित क्यों डाला? कदाचित उदीरक है यानी चौथे वाला इन दोनों का उदीरक है, पांचवे वाला अप्रत्याख्यान का अनुदीरक है पर प्रत्याख्यान का उदीरक है, और चौथा हो पांचवा हो छठा हो सातवां हो संज्वलन के तो सभी उदीरक है ही है। फिर से देखना है कि समझ में आई बात, समझ में आए थे ना? सम्यक यानी वेदक समय दृष्टि है, चौथे से सातवें गुणस्थान है, तो देखो ये संज्वलन का नियम से लिखा और इनके लिए ऑप्शनल लिखा, कदाचित लिखा, कदाचित क्यों किए लिखा? क्योंकि चौथे पांचवे में डिपेंड्स, छठे सातवे वाले को इनका अनुदीरक है और चौथे पांचवे वाले यथायोग्य उसके उदीरक है, यहां लिखा ना संज्वलन का नियम से उदीरक है यानी चौथे से लेकर सातवें तक सभी उदीरक है, इसलिए नियम से लिखा, किंतु वह उसी की चार कषायों का कदाचित उदीरक होते हैं। अभी उसमें चार अलग अलग हैं, क्रोध मान माया लोग, तो किसी एक का उदीरक होगा, जब क्रोध का उदीरक है तो अन्य का नहीं है, इसलिए वो चार में से एक कदाचित लिख लिया। तीन वेदों का कदाचित उदीरक होता है, किंतु इन्हीं तीनों वेदों में से किसी एक वेद का नियम से उदीरक होता है, जो वेद है वही उसका चालू रहता है। ये सब किसके साथ लगा रहे हैं? हम सम्यक प्रकृति के उदय के साथ, उदीरणा के साथ लगा रहे हैं। हास्य रति, अरति और शोक का वह कदाचित उदीरक होता है, किंतु इन दोनों युगल में से किसी एक युगल का नियम से उदीरक होता है, क्योंकि वेदक समय दृष्टि है, सम्यक प्रकृति का उदय वाला है, उसकी उदीरणा कर रहा है, उसमें किसी एक का तो उसका तो उदय होगा ही होगा, दो युगल में से वो कब निकल जाएंगे? पर वहां सम्यक प्रकृति का उदय नहीं रहेगा यानी जब तक सम्यक प्रकृति का उदय है तो वहां इन दोनों में से एक तो रहेगा ही रहेगा। देखो बंध में हास्य रति का तो बंध विच्छेदी अरति शोक की पहले हो जाती है, उदय तो दोनों युगलों का आठवें के अंत तक रहता है, वहां उसकी उदय विच्छेदी है। भय व जुगुप्सा का वह कदाचित उदीरक होता है, क्योंकि भय जुगुप्सा के हमने उदय की बात देखी थी, कदाचित दोनों का उदय है, कदाचित एक एक का है, कदाचित दोनों का ही नहीं है, इसलिए कदाचित शब्द डाला। अब सम्यक मिथ्यात्व की उदीरणा करने वाला, अब हम ये कूट देखते हैं, सम्यक मिथ्यात्व इन्हें तीसरे गुणस्थान में है, तीसरे गुण स्थान में कषाय कितने हैं? उदय रूप अनंत अनुबंधी नहीं है तो तीन है, अनंत अनुबंधी छोड़कर। यहाँ उदय किसका है? सम्यक मिथ्यात्व का, यानी इस तरह से होगा। इसके उदय के साथ न मिथ्यात्व की उदीर्णा होगी, न सम्यक प्रकृति की होगी, न अनंत अनुबंधी की होगी। किसकी होगी? अब नियम से अप्रत्यक्षण प्रत्यक्षण संज्वलन की होगी, पर उनमें से एक एक कषाय की होगी। एक वेद की नियम से होगी, एक युगल की नियम से होगी, और भैजुगुप्सा की कदाचित होगी। देखो, सम्यक मिथ्यात्व की उदीर्णा करने वाला, ये हमको कुछ रटना याद नहीं करना है, हमको सोचना है बराबर। सम्यक्त्व, मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कषायों का नियम से अनुदीरक है। अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन कषायों का नियम से उदीरक है, परंतु उनमें से किसी एक एक को लेना है। किंतु इनकी बारह प्रकृतियों का वह कदाचित उदीरक होता है। बाहर को टोटल लिया तो उसमें से तीन क्रोध या तीन मान या तीन माया या तीन लोभ लेना। तीन वेदों का कदाचित उदीरक होकर वह उक्त तीन वेदों में से किसी एक का नियम से उदीरक होता है। ऊपर जो क्रोध मान माया लोभ के लिए कदाचित सभी का उदीरक अनुदीरक कहा, और क्योंकि वो कषाय भी पलटती रहती है, और यहाँ वेद वही का वही कायम रहता है, तो किसी एक वेद को लिया और उसको नियम से उदीरक। हास्य रति, अरति व शोक का कदाचित उदीरक होकर इन दो युगलों में से किसी एक का नियम से उदीरक होता है। भय व जुगुप्सा का कदाचित उदीरक होता है। ये तो समझ में आवे ऐसी बात है। अब देखो, अनंतानुबंधी क्रोध की उदीरणा करने वाला ये कौन सा जीव होगा? पहले में पहले उसका गुणस्थान नक्की करो। अनंतानुबंधी पहला और दूसरा, केवल पहले में वो विसंजना करके लौटा है वो नहीं लेना है, पर हमें उदीरणा करने वाला जीव लेना है, नहीं करने वाला नहीं लेना है। तो करने वाला जीव है अनंतानुबंधी की, तो मिथ्यात्व की उदीरणा करेगा कि नहीं करेगा? नियम है दूसरे वाला नहीं करेगा, पहले वाला करेगा। सम्यक प्रकृति की उदीरणा करेगा? हाँ, नियम से नहीं करेगा। सम्यक प्रकृति भी नहीं किया और सम्यक मिथ्यात्व की भी नहीं करेगा, तो नियम से जो है वो पहले बताएंगे। देखो, अनंतानुबंधी स्लोली चलेंगे, आपको सोचना बरोबर वहां। हाँ, अनंतानुबंधी क्रोध की उदय उदीरणा कहाँ है? पहले दूसरे में, उसका उदीरणा कर रहा है वाला जीव लिया। तो अनंतानुबंधी क्रोध की उदीरणा करने वाला सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व का अनुदीरक होता है। तो जो दूसरा प्रश्न है मेरा, अनंतानुबंधी क्रोध की उदीरणा करने वाला अनंतानुबंधी मान माया और लोभ की उदीरणा करेगा कि नहीं करेगा? हाँ, समझ में। हाँ, परंतु उस समय वो क्रोध की कर रहा है, तो प्रत्याख्यान की प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन क्रोध की उदीरणा कर रहा है, क्योंकि अभी स्पेसिफिकली बता दिया उन्होंने अनंतानुबंधी क्रोध का उदय उदीरणा चल रही है। देखो, वह मिथ्यात्व का कदाचित उदीरक व कदाचित अनुदीरक होता है, क्योंकि उदयावली में प्रविष्ट हुए मिथ्यात्व की प्रथम स्थिति युक्त मिथ्या दृष्टि के, ये प्रथमोपशम सम्यक्त्व प्राप्त करता है तब की बात है। प्रथम, देखो देखो, अभी इसको जरा सोचना बराबर। प्रथम ऑप्शन सम्यक तो प्राप्त करता है, एक बाजू उसके दर्शन मोहनीय कर्म था, एक बाजू अनंतानुबंधी कर्म था, तीन करण परिणाम हुए। तीन करण परिणामों में उसने दर्शन मोहनीय की इसमें गैप कर दी, यह अनंतानुबंधी की पोजीशन है। तो यहाँ दर्शन मुनि के यानी मिथ्यात्व के जो उदय रूप होते होते दो आवली प्रमाण बाकी रहे, फिर दो आवली में से एक आवली हो गए, अब इनकी उदीर्णा रुक गई है। अनंतानुबंधी की रुकी है क्या? नहीं, क्योंकि उसके तो पूरी कंटिन्यूएशन लाइन में है, तो उसके ऊपर के निशोकों में से नीचे आना कार्य चालू है। वो कब तक चलेगा? अंतिम समय तक, अनिवृत्ति के अंतिम समय तक अनंतानुबंधी की उदीर्णा चल रही है। जब औपशमिक सम्यक हो या वेदक हो, उसकी अनुदीर्णा चालू हो जाएगी जब सम्यक तो प्राप्त करने पर, परंतु मिथ्यात्व में उसकी उदीर्णा एक आवली पहले ही रुकी है। तो यहाँ अनंतानुबंधी क्रोध की उदीर्णा होते हुए भी मिथ्यात्व का अनुदीरक है। पहले हमने देखा ना, मिथ्यात्व का उदीरक था, फिर अनंतानुबंधी का अनुदीरक था, क्योंकि वो तो संयोजना करने वाला। अभी अनंतानुबंधी क्रोध की उदीरणा कर रहा है ऐसा जीव लिया। अब देखो यह हम प्रश्न पढ़ते, सम्यक तो प्राप्त करने के एक आवली पहले अनुदीरक हो गया, मिथ्यात्व का अनुदीरक हुआ, क्रोध का उदीरक चल रहा है, अनंतानुबंधी का उदय चल रहा है, वो तो अंतिम समय तक चलेगा। जैसे वेदक सम्यक्त के पूरी पोजीशन क्या थी? मिथ्यात्व के कंटिन्यूएशन में थे, अनंतानुबंधी भी कंटिन्यूएशन में थे, और ये पहले गुणस्थान वाला तीसरे में गया, अभी उसके अन्य भी दो प्रकृतियां है, वो तीसरे में गया, तो क्या होगा? इन दोनों का अपने रूप से उदय नहीं होगा, तो उसके उदय उदीर्णा रुक जाएगी। परंतु वेदक सम्यक्त होने के पूर्व अंतिम समय तक मिथ्यात्व का भी उदय उदीर्णा चालू थी, पर प्रथमोपशम पूर्ण प्राप्त करने के एक आवली पहले मिथ्यात्व की उदीर्णा रुकी है। इसलिए यहां कंडीशन क्या डाली, देखो, मिथ्यात्व का कदाचित उदीरक कदाचित अनुदीरक होता है, क्योंकि अनुदीरक कौन है? उदयावली में प्रविष्ट हुए मिथ्यात्व की प्रथम स्थिति युक्त मिथ्या दृष्टि के, प्रथम स्थिति तो वो प्रथम ऑप्शन वाला ही करता है ना, इन्हें प्रथम ऑप्शन के काल में मिथ्यात्व की प्रथम स्थिति कितनी रही अभी? आवली प्रमाण, ऐसे मिथ्या दृष्टि के, और सासाधन समय दृष्टि के उसका उदय संभव नहीं है। सासाधन सम्यक तो कब होगा? तो औपशमिक सम्यक तो के काल में, एक समय से लेकर छावली तक काल बाकी रहा, तो वहां क्या है? मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति उपशमित हुए पड़े हैं, वो अपनी जगह छोड़ ही नहीं सकते, और अनंतानुबंधी का उदय आ जावे तो जीव दूसरे में आ गया। अनंतानुबंधी के क्रोध की उदय उदीर्णा चालू है, फिर भी मिथ्यात्व की उदीर्णा नहीं हो रही है, मिथ्यात्व का वो अनुदीरक है, ऐसे भी दूसरे गुणस्थान में मिथ्यात्व का उदय ही नहीं है, जब पहले गुणस्थान में पहुंचेगा तब उसका उदय उदीरना चालू हो जाएगी एट ए टाइम। क्या कहा? प्रथम स्थिति युक्त मिथ्या दृष्टि के और सासाधन समय दृष्टि के उसका उदय संभव नहीं है। ये समझ में आई बात? अनंतानुबंधी का उदीरक होते हुए भी मिथ्यात्व का अनुदीरक कौन है? तो सासाधन वाला, और दूसरा कौन सा जीव लिया? प्रथम ऑप्शन के सन्मुख एक आवली अंतिम आवली वाला जीव, वह ने अनंतानुबंधी क्रोध की उदीर्णा करने वाला। अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान और संज्वलन, इन तीन क्रोध कषायों का क्रोध की भी नियम से उदीरक होता है, और शेष 12 कषायों का नियम से अनुदीरक होता है। लक्ष्मी बेन ये 12 कषाय गिनाएंगे? देखो यहाँ तो यह प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन की बात है ना, हाँ ये तीन हो गए, और अनंतानुबंधी के भी तीन ले लेना, हाँ चारों के तीन के लिए। क्रोध का उदय तो चारों के क्रोध का उदय है, बाकी का अनुदीरक। तीन वेदों का कदाचित उदीरक होकर, क्योंकि तीन वेदों में से किसी एक वेद का उदय है तो उसकी उदीरणा भी चल रही है, उक्त तीन वेदों में से किसी एक का नियम से उदीरक होता है, यानी जिस वेद का उदय है उसके उदीरक तो नियम से होता ही रहता है, हर समय उसकी उदीरणा भी चलती है। हास्य रति और अरति शोक का, कदाचित उदीरक होकर दोनों युगलों में से किसी एक युगल का नियम से उदीरक होता है। ये हास्य के साथ रति वो तो नियम से है, ऐसा नहीं कि हास्य और अरति का कॉम्बिनेशन नहीं होगा, शोक रति का कॉम्बिनेशन नहीं होगा, हास्य के साथ रति का ही है और शोक के साथ अरति का ही है। किसी एक युगल का उदीरक है और दूसरे का अनुदीरक है। भय और जुगुप्सा का कदाचित उदीरक होता है, क्योंकि उसके अनुदीरक भी हो सकता है, उदीरक भी हो सकता है। इसी प्रकार जो हमने अनंतानुबंधी क्रोध के लिए लिखा, घटित किया, वैसा ही एक एक को लेकर बताना, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया, अनंतानुबंधी लोभ के लिए। इसी प्रकार अनंतानुबंधी मान, माया और लोभ के आश्रय से कथन करना चाहिए। विशेष इतना है कि मान की उदीरणा के समय चार मान कषायों की, माया की उदीरणा के समय चार माया कषायों की और लोभ की उदीरणा के समय चार लोभ कषायों की नियम से उदीरणा होती है, ऐसा कहना चाहिए। ये तो आसान है। अब अप्रत्याख्यान कषाय के क्रोध की उदीरणा करने वाला तीन प्रकार के दर्शन मोहिनी की कदाचित उदीरणा करता है। देखो अभी इसका अर्थ करते हैं। पहले ये मुझे बताओ, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध लिया है ना, उसका उदीरक कौन जीव है? प्रेरणा बे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, आप क्या कहते हैं? तो पहले वाला मिथ्यात्व की उदीरणा करेगा नियम से, दूसरे वाला मिथ्यात्व की नहीं करेगा, तीसरे वाला सम्यक मिथ्यात्व की करेगा, चौथे वाला सम्यक प्रकृति की करेगा। तो यहाँ क्या कहते हैं? अप्रत्याख्यान कषाय के क्रोध की उदीरणा करने वाला तीन प्रकार के दर्शन मोहिनी की कदाचित उदीरणा करता है। ये कदाचित करने वाला कौन है? वो मिथ्यात्व की करने वाला मिथ्या दृष्टि है, समय मिथ्यात्व तीसरे गुणस्थान वाला है, समय प्रकृति की करने वाला चौथे वाला है। अब जो ये जो जीव है वह अनंतानुबंधी क्रोध का कदाचित उदीरक होता है। क्यों? अप्रत्याख्यान की उदीरणा है, और कदाचित क्यों कहा? क्योंकि पहले और दूसरे गुणस्थान वाले उदीरक है, तीसरे चौथे वाले उसके उदीरक नहीं है। शेष अनंतानुबंधी मान आदि कषायों का वह अनियम से अनुदीरक है, क्योंकि अप्रत्याख्यान क्रोध की उदीरणा करने वाला है, तो अनंतानुबंधी मान माया लोभ का तो नियम से अनुदीरक है, क्योंकि एट ए टाइम क्रोध के साथ क्रोध का ही उदय होगा, होगा तो हो, पहले दूसरे में होगा, तीसरे चौथे में उसका भी नहीं होगा, परंतु मान माया लोभ का तो होगा ही नहीं। प्रत्याख्यान क्रोध और संज्वलन क्रोध का नियम से उदीरक है, ये क्या कहना चाहते हैं? जो अप्रत्याख्यान की उदीरणा कर रहा है, कौन सा है वो? पहले दूसरे तीसरे चौथे गुणस्थान वाला, तो उसके प्रत्याख्यानावरण संज्वलन होगे कि नहीं होगे? नियम से होगे। अनंतानुबंधी में ऑप्शनल देखा, क्योंकि पहले दूसरे वाले करेंगे, ऊपर के नहीं करेंगे। अब अप्रत्याख्यान जहां है वहां प्रत्याख्यान संज्वलन तो नियम से है, तो कहते प्रत्याख्यान क्रोध और संज्वलन क्रोध का नियम से उदीरक है, परंतु सभी के मान माया लोग सब जो हमने देखे नहीं, क्रोध छोड़कर बाकी सब उसका अनुदीरक होगा। तो अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन, मान माया एवं लोभ, इन शेष नौ कषायों का नियम से अनुदीरक होता है। ख्याल में आ रही बात कैसे घटित करें? तीन वेदों का कदाचित उदीरक होकर वह उक्त तीन वेदों में से किसी एक का नियम से उदीरक होता है। हास्यरति और अरति शोक का कदाचित उदीरक होकर इन युगलों में, दो युगलों में से किसी एक का नियम से उदीरक है। ऐसा नहीं कि भाई जुगुप्सा जैसे है ही नहीं, ऐसा नहीं है, होगा, एक युगल का होगा। भय और जुगुप्सा वह कदाचित उदीरक होता है। इसी प्रकार से अप्रत्याख्यान मान आदि शेष तीन कषायों के आश्रय से प्ररूपना करना चाहिए। जैसे क्रोध पर हमने घटित किया, वैसे मान माया लोभ में घटित कर। अब यहीं रुकेंगे। चावानी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सोवाणी मस्तकनम सदा देतः।